अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न किया है कुछ एडवांस पार्टी के लिए, सतयुग कब से कहा जाता है, इस बीच में परिवर्तन कैसे होता है, बहुत संक्षेप में। आप सभी लोग सुनते हैं बाबा की मुरलियों में कि संगम युग की आयु 100 वर्ष है। कब से कब तक? जब से बाबा का कार्य शुरू हुआ और जब तक श्री लक्ष्मी और नारायण गद्दी पर बैठे। ये सब बातें जो मैं आपके सामने अब रख रहा हूँ संक्षेप में, ये बाबा ने चाहे साकार में बताई हैं, चाहे अव्यक्त में। मैं अपना चिंतन नहीं बताता हूँ, अभी समय इतना नहीं है। तो इससे पहले हम देखते हैं कि 50 साल पूरे हो रहे हैं। हमारे पुरुषार्थ का भी इन बातों से गहरा संबंध है और हमें ये जानकारी स्पष्ट हो, ये बात भी उतनी ही जरूरी है। 50 साल तो पूरे हो रहे हैं, अगले 50 सालों में विनाश और स्थापना। स्थापना अर्थात अब जानते हैं महल भी बनेंगे, देवताओं का जन्म भी होगा, वो बड़े भी होंगे, उससे पहले यहाँ भयंकर विनाश और विनाश के साथ प्रत्यक्षता। जय जयकार हाहाकार और संसार का ये स्थूल निर्माण और देवताओं का यहाँ पर आना, इतने सब काम और वो बड़े होकर गद्दी तक पहुंचे, इतने सब काम इन 50 सालों में होने वाले हैं। अब दो तीन चीजें हैं केवल इसके बारे में जानने की। एक तो देवताओं को राजाई कैसे मिलती है और एक देवताओं का जन्म कैसे हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है, इम्पोर्टेंट बात है कि कलयुग में जो सिस्टम चल रहा है भोग बल का, उससे योग बल एकदम से कैसे शुरू होगा। जादू से तो कुछ नहीं होता है, सब कुछ एक सिस्टम से परिवर्तित होगा। तो इन सब के लिए ही एक तो रहे हुए 50 साल। तो प्रश्न था ये किसी का, श्री कृष्ण के जन्म से क्या सतयुग कहेंगे? नहीं, श्री कृष्ण का जन्म कहा जाएगा संगम में हुआ और जब वो गद्दी पर बैठा, क्योंकि सतयुग उस समय को कहा जाता है जब कलयुग का कोई भी मनुष्य यहाँ जीवित न हो, केवल वही हो जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पावन है। लेकिन आत्मा और शरीर पावन होने में भी पीछे एक रहस्य हो जाता है। एक तो हम जानते हैं कि देवताओं के शरीर और आत्मा पावन है और योग बल से जन्म होना, इसके लिए शरीर और आत्मा दोनों का पावन होना जरूरी है। लेकिन देवताओं के माँ बाप का शरीर पावन कैसे बना, क्योंकि देवताओं के माँ बाप वो सब आत्माएं हैं जो इस समय ब्राह्मण परिवार से शरीर छोड़कर जा रहे हैं, जिनको हम एडवांस पार्टी कहते हैं, जो जाकर देवताओं को जन्म देंगे। अब देवताओं को जन्म देने वाले माँ बाप के शरीर, चलो आत्मा तो पावन हुई यहाँ जितनी भी हुई, लेकिन उनका शरीर कैसे पावन होगा, क्योंकि जब तक उनका शरीर पावन न हो तो देवताओं को जन्म नहीं दे सकते, क्योंकि पावन शरीर से ही पावन शरीर का जन्म होगा। अब ये जो आत्माएं यहाँ से जा रही हैं, मान लो कोई भी ब्राह्मण आत्मा शरीर छोड़ती है और उसको गर्भ में जाना है, अब जिसके घर जा रही है वो सब पतित हैं, माना उनके शरीर तमो प्रधान तत्वों के बने हुए हैं, पतित हैं। लेकिन बाबा ने एक सिद्धांत बता दिया कि गर्भ में ही इन आत्माओं का शरीर पावन हो जाएगा। उसके तीनों तरीके होंगे। एक हम सब का योग, जिसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं उसके द्वारा। एक उस आत्मा ने जो अपना योग कमाया, जो उसके पवित्र वाइब्रेशंस हैं उसके द्वारा। और तीसरा बाबा की मदद के द्वारा, बाबा भी ऊपर से उनके गर्भ को पावन करने के लिए प्रकाश वाइब्रेशंस देते हैं। इन तीनों के द्वारा इन आत्माओं के शरीर पतित गर्भ में भी पावन हो जाते हैं, और इसलिए जब ये बच्चे बनते हैं, बड़े होते हैं, तो इनका शरीर पावन ही रहता है और उनके द्वारा ही देवताओं का जन्म होता है। तो एक तो ये कार्य जो बाबा कहते हैं एडवांस पार्टी, जिसके लिए बाबा ने बोला पिछले साल कि तुम बच्चों को मनसा सहयोग एडवांस पार्टी को भी देना है। एडवांस पार्टी जो जा रही है शरीर छोड़कर आत्माएं, उनके शरीरों को पावन करने का, और दूसरा जहां वो हैं, क्योंकि वहां वो तमो प्रधान वातावरण में है, कोई ज्ञानियों योगियों के घर में तो नहीं है, उनको उस वातावरण से मुक्त रखने का बल, यानी योग बल हमारा इतने वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाए कि कलयुग के दूषित वातावरण में रहते हुए भी वो आत्माएं उस दूषितता के प्रभाव से मुक्त रह सकें। दूसरी एडवांस पार्टी का काम है भारत में राजा स्थापित करना। जो संक्षेप में हम आपको बताएं, जो कुछ आज तक बाबा ने सुनाया है, तो ये काम है ममा पार्टी का। ममा और उसके साथ लगभग 8 आत्माएं हैं जो नेपाल में हैं, और उनके द्वारा भारत में इस प्रजातंत्र की समाप्ति के बाद राज की स्थापना हो जाएगी। इसके लिए बाबा ने थोड़ा सा अब तक केवल यही बताया है कि प्रजातंत्र जो है ये धीरे धीरे फेलियोर हो जाएगा, जैसे हम देख ही रहे हैं चारों ओर हंगामे, आतंकवाद, हरेक की अपनी अपनी प्रांतों की मांग, और चारों तरफ सारे संसार में भी जिस तरह स्थिति होती जा रही है, भारत में वो और प्रकोप के रूप में हो जाएगी, और ये राज मिलिट्री के हाथ में जाएगा, और फिर मिलिट्री उस चीज को जब दबाएगी, आतंकवाद को या और सब जो घोर घमसान होगा, तो उसमें बहुत ज्यादा अत्याचार और हाहाकार होगा, और कुछ समय बाद वो मिलिट्री के कमांडर्स भी मतलब उदास हो जाएंगे, निराश होंगे कि अब क्या करें, जैसे क्योंकि उस टाइम प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत होंगी और तामसिकता का अंत होने के कारण मनुष्य में वही उग्रता होगी कि वो किसी भी कानून का जैसे पालन नहीं करना चाहेगा, तो मार दिए जाएंगे सब लोग। तो उससे निराश होकर मिलिट्री कमांडर्स चाहेंगे कि ये राज सत्ता हम किसी को सौंप दें, अब ये हमारे बस की नहीं है। तो बाबा ने ये बताई थी बात कि उसी समय भारत में एक व्यक्ति का नाम बहुत प्रसिद्ध हो चुका होगा। उस व्यक्ति अब कौन उसको प्रसिद्ध करेगा, इसके पीछे ही ये रहस्य है। बाबा ने ही बताया था कि जैसे क्राइस्ट के जन्म से पहले आपने सुना हो उन 3 विद्वानों को साक्षात्कार जैसा हुआ था कि फलानी जगह ऐसी कोई महान आत्मा आ रही है, उसके दर्शन के लिए वो गए थे। बाबा ने कहा ऐसे कई लोगों को यहाँ साक्षात्कार होंगे उसके लिए, और ऐसा एक वातावरण जैसा बनेगा कि सब लोग ये मानेंगे कि ये एक व्यक्ति ही बहुत महान है, योग्य है, और वो सब मिलकर उस एक व्यक्ति को राज सौंप देंगे। वहां से राजा ही शुरू हो जाएगी, और ये इस एक व्यक्ति को इस तरह प्रसिद्ध करने का काम करेगी ममा पार्टी, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है एकदम से राजा स्थापित होना और इस तरह होना, जबकि आज इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आज की संसार में जो प्रणाली चल रही है, डेमोक्रेसी या जो कुछ भी चलता है सारे संसार में, कहीं भी राजा ही होगी फिर से, ऐसी किसी की कल्पना नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम जो ममा पार्टी के द्वारा गुप्त रूप से होगा, और क्या इसमें रहस्य है वो बाबा आगे जाकर प्रत्यक्ष करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से ये दो काम, एक भारत में राजा स्थापित करना, तो जब उस एक व्यक्ति को राज मिलेगा उसके घर में देवताओं का जन्म होगा, डेफिनेटली श्री कृष्ण का ही होना चाहिए, और वो राजा ही उससे श्री कृष्ण को चली जाएगी। और दूसरी पार्टी योग बल से जन्म देने का कार्य करेगी। अब ये दो काम और तीसरा काम विनाश का, महलों के निर्माण का और इन तत्वों के प्योरिफिकेशन का, जो भी काम होता है वास्तव में सूक्ष्म रूप से अगर हम देखें हम सबके योग बल के द्वारा, जैसे बाबा ने पहले कई बार ये बात समझाई है कि शंकर के द्वारा विनाश जो प्रसिद्ध है, तो शंकर तुम्हारी तपस्वी स्वरूप की ही स्थिति है, तुम्हारे तपस्वी स्वरूप के द्वारा जिसको बाबा ज्वाला रूप स्थिति भी कहते आए हैं, उसके द्वारा वैज्ञानिकों को और विनाश करने वाले जो और पॉलिटिशियंस होंगे उन सबको ऐसी प्रेरणाएं ही प्राप्त होंगी कि जिससे वो विनाश का कार्य शुरू करेंगे। और प्राकृतिक आपदाएं भी वास्तव में हमारे योग बल की ही एक करामात है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं का अर्थ ही है दूसरे शब्दों में धरती का और तत्वों का प्योरिफिकेशन। अब है इन तत्वों में और धरती में इम्प्योर वाइब्रेशंस, तो हम सब आत्माएं जितना जितना अधिक पवित्र बनती जाती हैं, हमारे पवित्र वाइब्रेशंस मानो धरती से और तत्वों से इम्प्योर वाइब्रेशंस को बाहर निकाल फेंकना चाहते हैं, और उसी का दूसरा स्वरूप है प्राकृतिक आपदाएं। तो हम सबके योग बल से, हम इन बातों की डिटेल में अभी नहीं जाते हैं, इस तरह हमारे योग बल से आने वाले समय में इस ये रहा हुआ स्थापना का कार्य और इस तरह विनाश का कार्य पूर्ण हो जाएगा। इन हीरे मोतियों के लिए बाबा ने थोड़ी थोड़ी बातें कई बार बताई हैं हम सबको कि जब धरती ये प्राकृतिक प्रकोप होंगे और समुद्र में इस तरह के ज्वार भाटे होंगे तो बहुत सारा समुद्र का पानी भारत की धरती पर आ जाएगा। और जानते ही हैं कि सागर के तल में ऐसे हीरे मोती जवाहरात बहुत सारे हैं, तो वो धरती पर आ जाएंगे और जब पानी पीछे हटेगा तो वो सारे इस लैंड पर बिखरे पड़े होंगे। तो जब यहाँ होंगे हीरे मोती तो फिर महल किसके बनाएंगे, कौन पत्थरों को इकट्ठा करेगा, पत्थर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, यही सब चीजें ज्यादा होंगी। तो प्रयोग इनका ही कर लिया जाएगा। और टेक्नोलॉजी और जो आजकल विज्ञान के साधन बहुत रिफाइन हो रहे हैं, मकान बनाने के भी साधन बहुत रिफाइन होते जा रहे हैं, जिन्होंने जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे उन्होंने देखा होगा सुना होगा रुड़की में एक सेंटर है, सेंट्रल रिसर्च बिल्डिंग इंस्टीट्यूट, जहां पर बहुत सारी बिल्डिंग बनाने की आधुनिक जो भी आधुनिक विज्ञान की रिसर्चेज हो रही हैं उनका प्रयोग बिल्डिंग्स में किया जा रहा है, जल्दी से जल्दी मजबूत से मजबूत कैसे किया जाए। तो ये सब चीजें और रिफाइन होके हम सबके काम आएंगी। ये विज्ञान सारा का सारा, जैसे बाबा कहते हैं कि अभी तो विज्ञान भी इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है, और जब ये संपूर्ण होगा तो संपूर्ण आत्माओं के ही काम आएगा। संपूर्ण विज्ञान अपूर्ण आत्माओं के काम नहीं आ सकता, उन्हें वो सुख नहीं दे सकेगा। तो हम सब जैसे जैसे संपूर्ण बनेंगे, ये संपूर्ण विज्ञान के संपूर्ण सुखों के साधन हमारे लिए उपलब्ध होंगे। इसलिए महल बनाने में भी कोई बहुत समय नहीं लगेगा। कई सोचते हैं ना कि आज एक बिल्डिंग बनाने में भी 2-4 साल लग जाते हैं और सारी दुनिया सोने की बने तो कितने साल चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होगी। सब साधन तैयार होंगे और विज्ञान के साधन बहुत अधिक मदद करेंगे हम सबको, तो वो भी सहज रूप से हम सबके लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरह हम सबको मनसा सेवा पर, अर्थात मनसा सेवा को